एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट
और मैं हूं आपका साथी होस्ट। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो वाकई सोचने का नजरिया बदल सकती है।
हाँ, कौन सी किताब?
डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन की लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, हाउ टू चेंज योर माइंड एंड योर लाइफ।
सीखा हुआ आशावाद। अरे वाह, लर्न्ड ऑप्टिमिज्म, ये तो बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, खासकर आजकल, है ना?
बिल्कुल, चारों तरफ इतनी अनिश्चितता है, इतने चैलेंजेस हैं, और हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग मुश्किलों से और मजबूत होकर निकलते हैं
और कुछ जैसे बिखर से जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है?
यही तो, ये किताब शायद इसी का जवाब देती है।
हाँ, ये किताब इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। ये इस आम धारणा को चैलेंज करती है कि भाई हम तो पैदाइशी आशावादी या निराशावादी होते हैं।
अच्छा,
तो मेरे क्या कहती है ये?
सेलिगमैन कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखा जा सकता है।
सीखा जा सकता है, ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है,
है ना? तो चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर ले। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन।
हाँ बताइए, कौन है ये?
देखिए, डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उन्हें पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी सकारात्मक मनोविज्ञान का आप कह सकते हैं फादर फिगर माना जाता है।
ओह, पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक।
जी हाँ, वो एक बहुत ही जाने माने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर रहे हैं और कई बेस्ट सेलिंग किताबों के लेखक भी। और उनका काम कोई हवा हवाई बातें नहीं है, दशकों की सॉलिड साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड है।
अच्छा, और उनकी कहानी में कुछ खास बात, मतलब वो इस टॉपिक तक पहुंचे कैसे? हाँ, उनकी जर्नी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने शुरुआत की थी 1907 के दशक में सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस पर अपने मशहूर एक्सपेरिमेंट से।
लर्न्ड हेल्पलेसनेस, ये क्या था?
उन्होंने दिखाया कि कैसे जानवर और बाद में पता चला इंसान भी, जब बार बार ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस फेस करते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता,
तो वो हार मान लेते हैं।
एग्जैक्टली, वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। वो सीख लेते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, कुछ बदलना नहीं है, लाचार होना सीख लेते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी।
ये तो सुनने में ही थोड़ा डिप्रेसिंग लग रहा है।
बिल्कुल, और यहीं से उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट आया। उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर लाचारी सीखी जा सकती है तो क्या इसका ठीक उल्टा,
यानी आशावाद,
हाँ, क्या ऑप्टिमिज्म भी सीखा जा सकता है? और बस यहीं से लर्न ऑप्टिमिज्म का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ।
कमाल है। तो ये किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि साइकोलॉजी के ठोस एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च पर टिकी है।
एकदम।
तो फिर थोड़ा और बताइए इस किताब के बारे में, इसका मेन आइडिया क्या है?
देखिए, ये किताब बेसिकली एक तरह का मिक्स है। इसमें साइंटिफिक डिस्कवरी भी है और प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प गाइड भी।
अच्छा,
ये बताती है कि जो लोग आशावादी होते हैं उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, उन्हें काम में ज्यादा कामयाबी मिलती है, यहां तक कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी भी, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत भी ज्यादा होती है।
पर ये सिर्फ वो पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा टाइप की बात तो नहीं है ना? वो तो बहुत सुनने को मिलता है।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, यही तो इसकी खासियत है। ये सिर्फ प्रीचिंग नहीं है, ये एक ठोस तरीका बताती है, एक कॉग्निटिव टूल देती है।
कॉग्निटिव टूल मतलब?
मतलब सोचने का एक औजार जिससे हम अपनी सोच के पैटर्न को समझ सकते हैं और अगर वो निराशावादी है तो उसे बदल सकते हैं। ये समझाती है कि नेगेटिव सोच काम कैसे करती है और उसे चैलेंज कैसे करना है।
ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है।
हाँ, और ये सिर्फ पर्सनल लेवल की बात नहीं करती। किताब में बताया गया है कि कैसे ये सोच काम की जगह पर, बच्चों की परवरिश में, हेल्थ में और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी असर डालती है।
पॉलिटिक्स में भी कैसे?
वो आगे आएगा, पर हाँ, इसका दायरा काफी बड़ा है। किताब आपको एक तरह की साइकोलॉजिकल जर्नी पर ले जाती है।
कैसी जर्नी?
पहले वो सीखी हुई लाचारी समझाते हैं, फिर बताते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक सोच में मेन फर्क क्या है, जिसे वो एक्सप्लेनेटरी स्टाइल या व्याख्यात्मक शैली कहते हैं, और फिर सबसे जरूरी, इसे बदलने का तरीका बताते हैं।
चलिए, तो इस जर्नी पर थोड़ा और गहराई में चलते हैं। शुरुआत होती है सीखी हुई लाचारी से। आपने बताया एक्सपेरिमेंट्स के बारे में।
हाँ, वो कुत्तों वाले एक्सपेरिमेंट्स बड़े फेमस हैं। जिन कुत्तों को पहले भागने का मौका नहीं दिया गया, वो बाद में मौका मिलने पर भी भागने की कोशिश नहीं करते थे,
क्योंकि वो सीख चुके थे कि उनकी कोशिश बेकार है।
बिल्कुल, सेलिगमैन ने इसकी तुलना इंसानों के डिप्रेशन से की। जब लगता है कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं तो एक तरह की लाचारी आ जाती है। तो इससे आगे बढ़कर वो आशावाद पर कैसे आते हैं?
यहीं से वो अपने सेंट्रल आइडिया पर आते हैं, व्याख्यात्मक शैली यानी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल।
व्याख्यात्मक शैली
ये क्या होती है?
ये वो तरीका है जिससे हम अपने साथ होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारण खुद को समझाते हैं, मतलब क्यों हुआ ये। और यही स्टाइल आशावादी और निराशावादी लोगों में मेन फर्क पैदा करती है।
अच्छा, इसे समझने का कोई तरीका?
हाँ, उन्होंने इसे समझने के लिए 3 P दिए हैं।
3 P, इंटरेस्टिंग, क्या है ये?
पहला P है परमानेंस, यानी स्थायित्व।
स्थायित्व, ठीक है।
जब कोई बुरी घटना होती है तो क्या हम उसे स्थायी मानते हैं, परमानेंट? जैसे ये हमेशा मेरे साथ ही होता है, या मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, या फिर हम उसे अस्थायी मानते हैं, टेम्पररी, जैसे इस बार गड़बड़ हो गई या आज मेरा दिन खराब था। आशावादी लोग बुरी घटनाओं को टेम्पररी मानते हैं।
समझ गई, ये तो हुआ पहला P। दूसरा?
दूसरा P है पर्वेसिवनेस, यानी व्यापकता।
व्यापकता मतलब?
मतलब क्या हम एक फील्ड की नाकामी को पूरी जिंदगी पर हावी होने देते हैं, जैसे मैं किसी लायक नहीं हूँ या मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया।
ओ।
या फिर हम उसे उसी खास सिचुएशन तक लिमिटेड रखते हैं, स्पेसिफिक मानते हैं, जैसे मैं इस खास काम में अच्छा नहीं हूं या सिर्फ ये वाला प्रोजेक्ट फेल हुआ। ऑप्टिमिस्ट लोग नाकामी को स्पेसिफिक मानते हैं, यूनिवर्सल नहीं।
ये तो बहुत कॉमन है, जैसे कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए और सोचने लगे कि वो पढ़ाई में ही बेकार है पूरी तरह से।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और तीसरा P है पर्सनलाइजेशन, वैयक्तिकरण।
पर्सनल बनाना।
हाँ, जब कुछ बुरा होता है तो क्या हम हमेशा सारा दोष खुद पर ले लेते हैं, इंटरनल, जैसे मेरी ही गलती है, मैं ही बेवकूफ हूँ।
या फिर हम बाहरी कारणों को भी देखते हैं, एक्सटर्नल, जैसे सिचुएशन मुश्किल थी, ये काम वाकई बहुत कठिन था।
निराशावादी अक्सर सारी गलती अपनी मान लेते हैं,
जबकि आशावादी
सिचुएशन को ज्यादा बैलेंस तरीके से देखते हैं। हाँ, वो ये भी कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना जरूरी है, ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए दूसरों को ब्लेम करें, लेकिन लगातार खुद को कोसना ठीक नहीं।
तो ये है 3 P, परमानेंस, पर्वेसिवनेस और पर्सनलाइजेशन। ये तय करते हैं हमारी व्याख्यात्मक शैली।
ये तो अपनी सोच को एनालाइज करने का एक फ्रेमवर्क मिल गया।
बिल्कुल, और किताब में टेस्ट भी है जिससे लोग अपनी स्टाइल पता लगा सकते हैं।
अच्छा,
और ये स्टाइल बनती कैसे है? क्या ये बचपन से ही होती है?
किताब बताती है कि ये काफी हद तक बचपन के अनुभवों से बनती है, जैसे आपके पेरेंट्स, खासकर माँ की स्टाइल कैसी थी, टीचर्स या बड़ों से आपको किस तरह की क्रिटिसिज्म मिली, जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव, क्राइसिस, ये सब मिलकर हमारी सोच का पैटर्न बनाते हैं।
लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे बदला जा सकता है, जैसा आपने कहा।
हाँ, यही सबसे जरूरी पॉइंट है।
और इसका असर कहाँ कहाँ दिखता है, किताब में कुछ उदाहरण है?
बिल्कुल है, एक बहुत फेमस केस स्टडी है मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी की।
मेटलाइफ? हाँ, सुना है।
वहाँ इंश्योरेंस एजेंट्स की नौकरी बहुत मुश्किल होती है, बहुत रिजेक्शन झेलना पड़ता है, तो लोग जल्दी नौकरी छोड़ देते थे।
समझ आता है।
सेलिगमैन की टीम ने वहाँ रिसर्च की और पाया कि जिन एजेंट्स की व्याख्यात्मक शैली आशावादी थी, मतलब जो रिजेक्शन को टेम्पररी, स्पेसिफिक और एक्सटर्नल मानते थे,
वो ज्यादा टिकते थे।
न सिर्फ टिकते थे बल्कि वो ज्यादा सेल्स भी करते थे। उनकी ये ऑप्टिमिज्म वाली स्टाइल कंपनी के अपने स्टैंडर्ड भर्ती टेस्ट से भी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पा रही थी कि कौन एजेंट सफल होगा और कौन नहीं।
अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब आशावादी सोच सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये वाकई परफॉर्मेंस पर असर डालती है।
यकीनन, उन्होंने तो ऐसे लोगों को भी हायर किया जो स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल हो गए थे पर ऑप्टिमिज्म स्कोर में हाई थे, और उन लोगों ने निराशावादियों से कहीं बेहतर परफॉर्म किया।
ये तो बिजनेस के लिए भी बड़ी लर्निंग है।
बिल्कुल, और सिर्फ काम ही क्यों, सेहत पर भी इसका गहरा असर होता है।
सेहत पर कैसे?
रिसर्च बताती है कि निराशावादी सोच हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
सच में?
हाँ, जबकि आशावाद बेहतर हेल्थ हैबिट्स और स्ट्रेस से बेहतर तरीके से डील करने से जुड़ा है। यहां तक कि कार्डियक सर्जरी के मरीजों में भी देखा गया कि जो आशावादी थे उनके रिकवरी आउटकम्स बेहतर थे।
बाप रे, मतलब हमारी सोच का असर हमारे शरीर पर, हमारी इम्यूनिटी पर भी पड़ रहा है, ये तो बहुत गहरी बात है।
जी हाँ।
अच्छा, ये सब तो समझ आ गया कि निराशावाद क्या है, कैसे बनता है, क्या असर डालता है, लेकिन अब वो मिलियन डॉलर सवाल, इसे बदले कैसे, व्हाट्स द सॉल्यूशन? क्या किताब इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताती है?
हाँ, बिल्कुल, और यहीं पर किताब का सबसे, कह सकते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हिस्सा आता है। सेलिगमैन पेश करते हैं ABCD मॉडल।
ABCD मॉडल?
हाँ, ये सीखी हुई आशावादिता की कोर टेक्निक है।
ओके, ABCDE, ये क्या है, एक एक करके समझाएंगे प्लीज?
जरूर जरूर। देखिए बहुत सिंपल है। ए है एडवर्सिटी, यानी प्रतिकूलता, कोई भी मुश्किल सिचुएशन या बुरी घटना। मान लीजिए आपके बॉस ने आपके काम में नुक्स निकाला, ये हुआ ए।
ठीक है, एडवर्सिटी।
बी है बिलीफ, यानी विश्वास। उस घटना ए के बारे में आपका फौरन ऑटोमेटिक विचार क्या आया, यही आपकी वो व्याख्यात्मक शैली तीन पीस काम करती है।
अच्छा, जैसे कुछ बुरा हुआ दिमाग में जो पहली बात आई।
हाँ, जैसे मैं किसी काम का नहीं हूँ, पर्सनल, मेरा तो करियर ही खत्म हो गया, परमानेंट, अब मुझसे कुछ भी ठीक नहीं होगा, परवेसिव, ये हुआ बी।
ओके, बिलीफ।
सी है कॉन्सिक्वेंस, यानी परिणाम, आपके उस विश्वास बी की वजह से आपको कैसा महसूस हुआ और आपने क्या किया,
मतलब भावनाएं और व्यवहार।
हाँ, जैसे दुखी महसूस करना, चिंता होना, निराश हो जाना, आगे काम करने का बिल्कुल मन न करना, ये हुआ सी।
ए एडवर्सिटी, बी बिलीफ, सी कॉन्सिक्वेंस। यहाँ एक मिनट रुकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि सी परिणाम सीधे ए घटना से नहीं आता।
एग्जैक्टली, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है।
हम सोचते हैं कि बॉस ने डांटा ए, इसलिए मैं दुखी हूँ, सी।
नहीं, बॉस ने डांटा ए, आपने सोचा मैं बेकार हूँ बी, इसलिए आप दुखी हैं सी। वो जो बीच का बी है ना, बिलीफ, सारा खेल उसी का है।
ये समझना तो गेम चेंजर हो सकता है। मतलब अगर हम अपने बी को बदल दें तो सी भी बदल सकता है।
बिल्कुल, यही इस मॉडल की जान है। और यहीं आते हैं अगले दो अक्षर डी और ई।
डी और ई बताइए।
डी है डिस्प्यूटेशन, यानी विवाद या खंडन। ये सबसे एक्टिव और सबसे जरूरी स्टेप है। यहाँ आप अपने उन निराशावादी विश्वासों को एक्टिवली चैलेंज करते हैं, उनसे बहस करते हैं।
बहस करते हैं अपने ही विचारों से।
हाँ, जैसे कोई वकील झूठे आरोपों का खंडन करता है, वैसे ही आप अपने नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को पकड़ते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। यही सीखी हुई आशावादिता का कोर स्किल है।
ओके, डिस्प्यूटेशन और
ई है एनर्जाइजेशन, यानी ऊर्जाकरण। जब आप सक्सेसफुली अपने नेगेटिव बिलीव्स बी का खंडन कर लेते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं?
बेहतर, ज्यादा पॉजिटिव।
हाँ, निराशा की जगह उम्मीद आती है, लाचारी की जगह एक्शन लेने की एनर्जी महसूस होती है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाते हैं। यह है ई।
तो पूरा मॉडल हुआ एडवर्सिटी, बिलीफ, कॉन्सिक्वेंस, डिस्प्यूटेशन, एनर्जाइजेशन। लेकिन ये खंडन, डिस्प्यूटेशन करें कैसे? मतलब अपने ही नेगेटिव विचारों से लड़ें कैसे?
हाँ, उसका भी तरीका बताया है। सेलिगमेंट डी के लिए चार तकनीकें सुझाते हैं।
चार तरीके, अच्छा।
पहला, एविडेंस, सबूत। अपने निराशावादी विश्वास के खिलाफ सबूत ढूंढिए। क्या ये सच है? क्या हमेशा ऐसा होता है? जैसे, क्या वाकई में किसी काम का नहीं? अरे, पिछले हफ्ते ही तो बॉस ने उस रिपोर्ट की तारीफ की थी।
अच्छा, सबूत ढूंढो। दूसरा,
दूसरा, ऑल्टरनेटिव्स, विकल्प। क्या उस घटना की कोई और कम निराशाजनक वजह हो सकती है, कोई और एक्सप्लेनेशन? जैसे, शायद बॉस का आज मूड ही खराब था, या उन्हें सिर्फ रिपोर्ट का वो एक हिस्सा पसंद नहीं आया, पूरी रिपोर्ट नहीं।
वैकल्पिक कारण सोचना। तीसरा,
तीसरा, इम्प्लिकेशंस, निहितार्थ। अगर आपका निराशावादी विश्वास सच भी है तो क्या उसके परिणाम वाकई उतने भयानक हैं जितना आप सोच रहे हैं? डीकैटास्ट्रोफाइज करना, जैसे, ठीक है, मान लिया ये रिपोर्ट अच्छी नहीं बनी, पर क्या इसका मतलब सच में मेरा करियर खत्म हो गया? शायद नहीं।
सिचुएशन को कम भयावह बनाना। और चौथा,
चौथा, यूजफुलनेस, उपयोगिता। क्या इस नेगेटिव सोच में फंसे रहना, इस पर ध्यान देना, अभी मेरे लिए किसी भी तरह से फायदेमंद है, या ये मुझे एक्शन लेने से रोक रहा है? जैसे, इस पर दुखी होने से क्या मिलेगा, इससे अच्छा है मैं बॉस से पूछूं कि क्या सुधार करना है।
एविडेंस, ऑल्टरनेटिव्स, इम्प्लिकेशंस, यूजफुलनेस। वाह, ये तो वाकई एक पूरा टूल किट है अपनी नेगेटिव सोच को हैंडल करने का। ABCD मॉडल।
बिल्कुल, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से, अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है।
जैसे कोई मसल ट्रेन करते हैं।
हाँ, बिल्कुल वैसी ही। ये एक मेंटल मसल है जिसे ट्रेन करना पड़ता है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, जो मुख्य बातें या संदेश श्रोताओं के लिए हैं, वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं। मतलब, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार घटनाओं से तय नहीं होते, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों, हमारे बिलीफ से तय होते हैं। ये कॉग्निशन की प्राइमेसी है।
हाँ, वो बी वाला पॉइंट। दूसरा, वो तीन पी वाली व्याख्यात्मक शैली, परमानेंस, पर्वेसिवनेस, पर्सनलाइजेशन। ये निराशावाद को समझने का एक कंक्रीट तरीका देती है। अब वो सिर्फ एक धुंधली सी नेगेटिव फीलिंग नहीं है, बल्कि एक पहचाना जा सकने वाला थॉट पैटर्न है।
बिल्कुल, जैसे आपने कहा था भारत में हम ये बहुत देखते हैं, परीक्षा में कम नंबर आए, एक बच्चा सोचता है मैं तो हूँ ही बेवकूफ, परमानेंट पर्सनल, दूसरा सोचता है इस बार तैयारी कम थी, अगली बार बेहतर करूंगा, टेम्पररी, स्पेसिफिक, कंट्रोलेबल, जमीन आसमान का फर्क है।
तीसरा और शायद सबसे एम्पावरिंग मैसेज, आशावाद एक सीखा जा सकने वाला कौशल है, ये कोई फिक्स पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, इसे सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, ABCD मॉडल उसका प्रैक्टिकल तरीका है, ये हमें अपनी मेंटल स्टेट का ड्राइवर बनाता है।
चौथा पॉइंट है मानसिकता का व्यापक असर, ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, इसका असर हमारे करियर पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे रिश्तों पर, हर चीज पर पड़ता है। वो मेटलाइफ को उदाहरण याद है ना?
हाँ बिल्कुल,
परफॉर्मेंस पर सीधा असर। और एक और बात, सेलिगमैन कहते हैं कि सीखी हुई लाचारी अक्सर डिप्रेशन की जड़ होती है, ये डिप्रेशन को समझने का एक नया नजरिया देता है, एक तरह से विचारों का डिसऑर्डर।
और वो खंडन की ताकत कि अपने नेगेटिव विचारों को चुपचाप मान मत लो, उनसे सवाल करो, उनसे बहस करो, ये प्रैक्टिस से आने वाली एक कला है।
और आखिर में वो लचीली आशावादिता, फ्लेक्सिबल ऑप्टिमिज्म, हमेशा हर सिचुएशन में आंख बंद करके पॉजिटिव नहीं सोचना है, कभी कभी रियलिटी चेक, क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी होती है। जैसे कोई पायलट है, उसे हर आवाज को पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए।
सही बात है, कुंजी यह है कि जरूरत के हिसाब से अपनी सोच को चुन सकें।
बिल्कुल, ज्यादातर चुनौतियों के लिए आशावाद बेहतर स्ट्रैटेजी है, पर जरूरत पड़ने पर रियलिस्टिक भी बने।
किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो आपको खास तौर पे स्ट्राइक किए, यादगार लगे?
हाँ, एक लाइन जो 3 P's का सार बहुत अच्छे से बताती है, निराशावादियों की परिभाषित विशेषता यह है कि वे मानते हैं कि बुरी घटनाएं लंबे समय तक चलेंगी, उनके हर काम को कमजोर करेंगी और ये उनकी अपनी गलती है। आशावादी हार को सिर्फ एक अस्थायी झटका मानते हैं कि इसके कारण सिर्फ इसी एक मामले तक सीमित है, ये फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है।
हाँ, ये बहुत सटीक है। और एक और बात जो मुझे बहुत पावरफुल लगी, यह एक चौंकाने वाला विचार है कि हम इसके बारे में सोचने के तरीके से अपनी नियति निर्धारित कर सकते हैं।
मतलब हमारी सोच में कितनी ताकत है।
बिल्कुल, और वो ABC मॉडल का बेस,
महत्वपूर्ण सी परिणाम, आप क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं, सीधे ए प्रतिकूलता के कारण नहीं होता है, इसके बजाय सी आपके बी विश्वास के कारण होता है। ये समझ लेना ही अपने आप में बहुत लिबरेटिंग है।
हाँ,
हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल पाने का रास्ता मिलता है।
तो इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, कोई रोजमर्रा का उदाहरण सोचें।
बिल्कुल, मान लीजिए किसी दोस्त से थोड़ी बहस हो गई।
ए,
पहला ऑटोमेटिक विचार आया, लो भाई अब ये दोस्ती खत्म।
बी, परमानेंट परवेसिव।
नतीजा सी, दुख हुआ, गुस्सा आया, उस दोस्त से बात करना बंद कर दिया।
ये तो होता है अक्सर। तो यहाँ डी कैसे लगाएं?
डी, डिस्प्यूटेशन। सवाल पूछें, क्या सबूत है कि दोस्ती खत्म हो गई? पिछले हफ्ते ही तो हम साथ में कितना एंजॉय कर रहे थे।
या
एविडेंस,
एविडेंस,
क्या कोई और वजह हो सकती है? शायद वो किसी और टेंशन में हो,
शायद वो किसी और टेंशन में हो।
क्या एक बहस का मतलब हमेशा दोस्ती खत्म होना होता है? शायद नहीं।
इम्प्लीकेशन,
इस नेगेटिव सोच में पड़े रहने से क्या फायदा है?
शायद नहीं।
चलो कॉल करके बात करते हैं।
हाँ, इससे शायद गुस्सा कम होगा और आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की सोचेंगे।
ई, बिल्कुल, या ऑफिस का उदाहरण लें, कोई प्रेजेंटेशन उम्मीद के मुताबिक नहीं गया।
ए,
सोचा मैं तो प्रेजेंटेशन देने में बेकार हूँ।
बी, खंडन करें।
हाँ, क्या सबूत है, पिछली वाली तो अच्छी गई थी। एविडेंस, क्या वैकल्पिक कारण है, शायद ऑडियंस आज रिसेप्टिव नहीं थी या मुझे तैयारी का टाइम कम मिला। ऑल्टरनेटिव, क्या इसका मतलब है कि मैं कभी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा? नहीं, इस सोच से क्या फायदा, अगली बार और तैयारी करूंगा। यूजफुलनेस,
ये आपको सीखने और अगली बार बेहतर करने की हिम्मत देगा।
या
पेरेंटिंग में भी ये बहुत काम आ सकता है।
बिल्कुल, बच्चे के कम नंबर आए, ये कहने की बजाय कि तुम मैथ्स में हो ही कमजोर, परमानेंट पर्सनल, ये कहना कि तुम्हें ये वाला टेस्ट मुश्किल लगा, स्पेसिफिक, चलो देखते हैं कौन से टॉपिक समझ नहीं आए, उन पर और मेहनत करेंगे। टेम्पररी कंट्रोलेबल, इससे बच्चा लाचार महसूस नहीं करेगा।
सही बात है,
यहाँ तक कि हेल्थ गोल्स में भी काम आ सकता है। जैसे कोई स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है और एक दिन सिगरेट पी ली।
हाँ।
निराशावादी सोचेगा मुझ में विल पावर ही नहीं, मैं फेल हो गया, और शायद कोशिश ही छोड़ दे।
जबकि आशावादी खंडन करेगा, ये सिर्फ एक चूक थी,
स्पेसिफिक,
टेम्पररी, मैं पिछले 3 हफ्ते से बिना सिगरेट के था, जो अच्छी प्रोग्रेस है, एविडेंस। चलो कल से फिर कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, ये उसे ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा।
ई, तो ये तकनीक तो वाकई जीवन के कई एरियाज में अप्लाई हो सकती है।
सही।
अच्छा, अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे सरप्राइजिंग बात क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि हमारी मानसिकता, हमारा नजरिया पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे हम ट्रेन कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये विचार कि निराशावाद एक सीखी हुई आदत है जिसे भुलाया जा सकता है, ये अपने आप में बहुत होप देता है। और ABCD मॉडल का इतना प्रैक्टिकल होना कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ये करने लायक, सीखने लायक तकनीक है,
का सीधा मेजरेबल असर परफॉर्मेंस पर होता है। और ये भी कि ये सिद्धांत कितने यूनिवर्सल हैं, चाहे वो अमेरिका का सेल्स एजेंट हो या भारत का कोई स्टूडेंट या प्रोफेशनल। चुनौतियां अलग हो सकती हैं, पर दिमाग के काम करने का तरीका और उसे बदलने का तरीका काफी हद तक एक जैसा है। ये जानना कि हमारे पास अपनी सोच को बदलने का एक टूल है, ये बहुत एम्पावरिंग लगता है।
और वो लचीली आशावादिता वाली बात भी कि हमें ब्लाइंडली पॉजिटिव नहीं होना है बल्कि समझदारी से आशावाद का इस्तेमाल करना है, नोइंग व्हेन टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड व्हेन टू बी रियलिस्टिक।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।